Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jaya Dvaita Chandra Jaya
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Om Jnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Ena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Ena Bhutale Svayam Rupa Kadamaiham Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. तो हम डिस्कस कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाओं की शुरुआत होने जा रही है. चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को कह रहे हैं कि ये जो भक्ति का सागर है बहुत अधिक विस्तार है जिसका लंबाई और चौड़ाई नापना असंभव है. और हे रूप मैं तुम्हें केवल इसका विस्तार से वर्णन नहीं कर पाऊंगा. मैं तो तुम्हें सूत्र रूप में इस शिक्षा को प्रदान करूंगा, इस ज्ञान को प्रदान करूंगा. और ये जो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दे रहे हैं वो उन्होंने रामानंद राय से जो सुना था एक प्रकार से उसी को प्रदान कर रहे हैं. तो रूप गोस्वामी की जो शिक्षाएं हैं ये बहुत विस्तार से हैं और बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भागवतम के पहले श्लोक में वर्णन आता है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सुरया कि तेने ब्रह्म, ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का जो नॉलेज है, परम ब्रह्म जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसका ज्ञान किसको दिया था? आदि कवये. आदि कवये ब्रह्म का नाम है, तो आदि कवि है एक प्रकार से वो. तो ब्रह्मा को तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ऐसे ब्रह्मा को भगवान ने सृष्टि का ज्ञान दिया था. और साथ साथ भगवत भक्ति आदि का भी ज्ञान ब्रह्मा को प्रकट किया था. और उसी का जो आगे चल के अर्जुन को भी भगवान ने उसी प्रकार से भगवत गीता के फॉर्म में वो नॉलेज प्रदान किया. तो वही कृष्ण जब कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्ष इच्छामि मा शुच, तो जब वही कृष्ण अर्जुन को इस दिव्य ज्ञान को प्रकट करते हैं या प्रदान करते हैं, तो वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और अपने अलग अलग भक्तों को विशेष रूप की शिक्षा प्रदान करते हैं. तो प्रभुपाद ने जो समराइज स्टडी है लॉर्ड चैतन्य का, वो टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य बुक प्रदान किया है. उस बुक को कोई भक्त गंभीरता से स्टडी करता है तो चैतन्य महाप्रभु के सारे सिद्धांतों को समझ सकता है बहुत सरलता से, प्रभुपाद जोर देते थे। तो वो लॉर्ड चैतन्य के सारे टीचिंग का समरी स्टडी है, जिस प्रकार से नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु का जो ओरिजिनल ग्रंथ है रूप गोस्वामी का समरी स्टडी है, और भक्ति रसामृत सिंधु जो ये रूप शिक्षा प्रदान की है उसको ही विस्तार रूप दिया रूप गोस्वामी ने, और एक बेस्ट बुक कंपाइल किया भक्ति रसामृत सिंधु। तो ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु है उन्होंने अपने पूरा लीला चरित्र में जो पांच लोगों को शिक्षा प्रदान किया, पूरे उनके चरित्र को हम पढ़ते हैं। तो ऐसा कोई सिक्वेंसली उन्होंने टीचिंग नहीं दिया, उन्होंने अलग अलग भक्तों को अलग अलग समय में, जैसे वो नवदीप से जगन्नाथपुरी गए तो वहां जब जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए और जगन्नाथ जी को दर्शन करते ही भावावेश में आके गिर पड़े, हाँ, क्योंकि हमारे लिए असंभव है डिटीज को देखना। तो लेकिन प्रभुपाद कई बार ये चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते और कहते हैं कि भगवत विग्रह और भगवान में अंतर नहीं है, हाँ, उसको देखने के लिए तो प्रेम रूपी आंखें चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते हैं तो मूर्छित होके गिर पड़ते, तो वहां के जो पुजारी डंडा वगैरह लेके आते हैं उनको मारने के लिए। तो अच्छा है कि उस समय सारे सबके जो नेता हैं, सबके जो गुरु थे वो सार्वभौम भट्टाचार्य वहां थे, तो वो देखते कि ये जो सन्यासी ये कोई सामान्य सन्यासी नहीं है, वो उनको ले जाते अपने घर और फिर उनको कहते सुनो, तो उनको मायावाद दर्शन का शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले उनको शिक्षा देते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु बहाना बनाते हैं कि मेरे जो भाई है उन्होंने सन्यास ग्रहण किया है, मैं उनको ढूंढने के लिए जाता हूँ, तो दक्षिण भारत की यात्रा चले जाते, तो वहां रामानंद राय से सुनते हैं। तो रामानंद राय को वो ऑलरेडी शिक्षा देते हैं एक्चुअली, और फिर रामानंद राय से वो सुनते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब फिर वापस आते हैं और वृंदावन के लिए निकलते हैं, तो वृंदावन से जब वापस आते हैं तो वो रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। रूप गोस्वामी को शिक्षा 10 दिनों के बाद वो जब बनारस पहुंचते हैं तो सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। सनातन गोस्वामी जब चले जाते कि आप अभी वृंदावन चले जाओ, तो उसके बाद प्रकाशानंद सरस्वती को चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं। तो ये जो 5 टीचिंग्स हैं यही वो बुक है टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का सार है, और चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षाओं का सार संकलन है, सार संकलन किसी चीज का सार लेना, संकलित करना, कंपाइल करना, वो सार संकलन है। तो महाप्रभु के इन 5ों जो शिक्षाएं हैं, और स्पेसिफाइड है कि किसको कौन सी शिक्षा दी, क्यों उस प्रकार की शिक्षा दी, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग इन 5 भक्तों को 5 प्रकार के जो विषयों का ज्ञान प्रदान किया, और ये इसलिए गंभीर है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है, अगाध गंभीर, ये समुद्र की भांति है, पारापार शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु। तो ये पारापार मतलब इसका लंबाई चौड़ाई का कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे महाप्रभु की शिक्षा बहुत अधिक गंभीर है, और उसी चैतन्य महाप्रभु ने केवल अपनी शिक्षाओं को एक बीज फॉर्म में रखा है, और उसे शिक्षाष्टकम कहा जाता है। वो 8 श्लोक ऐसे हैं जिसमें सारे वेद उपनिषद पुराण आदियों की शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने कंडेंस फॉर्म में रखी है, उस बीज फॉर्म में। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझना एक प्रकार से बहुत कठिन है, लेकिन कौन व्यक्ति समझ सकता है, बालोपि यद अनुग्रहात। वो कहते हैं कि यदि बालक भी क्यों ना हो लेकिन महाप्रभु की शिक्षाओं को वो अप्रोच करता है, और महाप्रभु की कृपा से बालक भी उस शिक्षा को एक्सपर्ट हो जाता है, तब तरह नाना मतो ग्राहत के नाना प्रकार के मत है, फिलोसफीज है, सिद्धांत है, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है या चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को समझने का प्रयास करता है तो महाप्रभु की कृपा से वो नाना जो सिद्धांत है उनको बहुत सरलता से समझ लेता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की खासियत है और उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद ने उन्हीं की टीचिंग्स को आगे रखा। तो कोई भी व्यक्ति अभी संसारिक जीवन में कितने बड़े विद्वान आदि होते हैं उनके लिए कितना कठिन होता है भगवद गीता कुछ समझना, लेकिन इस्कॉन में कोई ज्वाइन करता है वो चार महीने नहीं होता तो सेमिनार देना शुरू करता है, कहते प्रभु जी आइए लेक्चर दीजिए भगवद गीता। भगवद गीता में बोलना अपने आप में कितना वरिष्ठ कार्य है, कितना बड़ा काम है। लेकिन हम ज्वाइन नहीं करते, शायद 5-6 महीने हो जाते तुरंत हम प्रवचन देना शुरू करते भगवद गीता पर। दीक्षा होती है कि नहीं तो कहते आप भागवतम क्लास लीजिए, कितने ये सब चीजें क्या है बहुत बड़ी है। लेकिन ये क्यों संभव हो रहा है, क्योंकि यहाँ भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु ने सारे शिक्षाओं को बहुत सरल रूप दिया है और उनके अनुयायियों ने, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा देने के बाद सबको कहा कंपाइल करो, सरल फॉर्म प्रकट करो, तो प्रभुपाद ने भी वैसे ही किया था। तो जो वेदों के जो ज्ञान है उसमें 3 विषय वस्तुओं का नॉलेज हमें प्राप्त होता है सारे वेदों का, और वो क्या है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो सारे जो ज्ञान है वेद, उपनिषद, पुराण आदि सबको इन 3 चीजों में कैटेगराइज्ड किया गया है, 3 लेवल में बांटा गया है सारे नॉलेज को। तो नॉलेज क्या है, 3 जो विभाग है वो है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिधेय ज्ञान और तीसरा क्या है, प्रयोजन ज्ञान। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तो हम देखते हैं कि जो संबंध ज्ञान है, संबंध ज्ञान क्या है, ये बहुत सरल शब्द है, संबंध से हम समझते हैं कि जीव कौन है, उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, और वो संबंध भूलने के कारण क्या हो रहा है या क्या होता है, इस चीज का जो नॉलेज हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं, संबंध ज्ञान। और ये नॉलेज चैतन्य महाप्रभु ने किसको दिया था, सनातन गोस्वामी को। तो जितना संबंध ज्ञान के एस्पेक्ट्स हैं, जीव कौन है, क्यों वो भगवान को भूला, कैसे भूला, या फिर भूलने से क्या समस्याएं हैं, उन सबका जो ज्ञान है वो संबंध ज्ञान है, या भगवान कौन है, जीव कौन है, उनका आपस में संबंध क्या है, ये सब ज्ञान संबंध ज्ञान में आता है। ये संबंध ज्ञान जीव गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया था, और इसी को ही सनातन शिक्षा भी कहा जाता है। तो ये संबंध ज्ञान सनातन गोस्वामी को दिया था। और जो दूसरा ज्ञान है वो क्या है, अभिधेय ज्ञान। तो अभिधेय ज्ञान कि ठीक है अभी संबंध हमें पता चल रहा है, लेकिन वो संबंध को कैसे रिकनेक्ट करना है, कैसे पुनः स्थापित करना है, वो विधि क्या है, उसको अभिधेय विधि, प्रोसेस, उस प्रोसेस क्या है उसको अभिधेय ज्ञान कहा गया है। मतलब वी वांट टू री एस्टैब्लिश अवर रिलेशनशिप विद कृष्णा, तो वो कैसे उस संबंध को पुनः स्थापित किया जा सकता है, और वो चीज का ज्ञान कौन सा है, अभिधेय ज्ञान। और वो ज्ञान रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने दिया, रूप गोस्वामी को ये नॉलेज चैतन्य महाप्रभु प्रदान करते हैं। और जो तीसरा एस्पेक्ट है नॉलेज का वो क्या है, प्रयोजन ज्ञान। तो ये प्रयोजन ज्ञान कि प्रयोजन का मतलब क्या है, गोल, और वो गोल क्या है, कृष्ण प्रेम। हम सुबह सुबह वो पढ़ते हैं जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम, शब्द आता है तो सब लोग जोर से कहते हैं कृष्ण प्रेम। हाँ, तो ये प्रयोजन ज्ञान चैतन्य महाप्रभु उनको प्रदान करते हैं। प्रयोजन ज्ञान रामानंद राय, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस ज्ञान की शिक्षा अलग अलग भक्तों को प्रदान करते हैं कृष्ण। तो अभी तो दो शिक्षाएं तो रह गई, आप कहेंगे तीनों के बारे में हमें बताया, रूप गोस्वामी के बारे में और सनातन शिक्षा, जो संबंध अभिधेय प्रयोजन रूप सनातन और रामानंद राय। लेकिन जो दो पर्सनालिटीज थे जिनको भी लॉर्ड चैतन्य ने नॉलेज प्रदान किया था, वो थे कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये नॉलेज प्रदान किया सनातन गोस्वामी को कि जीव कौन है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो ये नॉलेज जब प्रदान किया तो और ये पूरे वर्ल्ड को समझाया चैतन्य महाप्रभु ने कि ये जो ज्ञान है कि जीव जो है कृष्ण का दास है। तो लेकिन कुछ व्यक्ति कह सकते हैं कि कैसे हम इसको नहीं स्वीकार करते, कि मुझे तो डाउट है जो कृष्ण का दास नहीं हो सकता, जो कृष्ण ही है कि नहीं। तो उसको चैतन्य महाप्रभु ने फिर समझाया किनको? सार्वभौम भट्टाचार्य को। सार्वभौम भट्टाचार्य को ये नॉलेज वो प्रदान करते हैं। तो इसी को कहा गया है संबंध विचार, या संबंध विचार। संबंध विचार मतलब वो चीज को और विस्तार रूप से वो चीज को समझाते हैं जो चैतन्य महाप्रभु है। तो अपना विचार प्रकट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि जो कृष्ण का ही दास है और वो क्यों कृष्ण का दास है और क्यों जीव कृष्ण नहीं है। तो या फिर नहीं क्या मायावादी का ये विचार होता है कि हम कृष्ण बन जाएंगे या हम ही वो है, नारायण है। तो क्यों नारायण नहीं है, क्यों और कैसे कृष्ण का दास हो आप, जीव कैसे उनसे अभिन्न है, एक नहीं है, इन सब का नॉलेज, इसको संबंध विचार का जो ज्ञान है वो जो चैतन्य महाप्रभु है वो सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रदान करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को नॉलेज देते हैं तो उस ज्ञान को कहा जाता है अभिधेय विचार। मतलब कोई व्यक्ति कह सकता है कि रूप गोस्वामी को तो कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व और क्या था, रस तत्व प्रांत, ये तीन तत्वों की शिक्षा रूप गोस्वामी को दी है। कृष्ण तत्व क्या है और भक्ति तत्व क्या है और रस तत्व क्या है, इन तीनों का ज्ञान रूप गोस्वामी को प्रदान करते हैं चैतन्य महाप्रभु। और भागवतम के आधार पर या भागवतम का कंक्लूजन क्या है, तो मतलब कि संबंध क्या है जो सनातन गोस्वामी को एक्सप्लेन किया और उस संबंध को पुनः स्थापित करने की विधि डिवोशनल सर्विस है। तो इसलिए कोई कह सकता है नहीं नहीं योग भी है, योग से भी पुनः स्थापित हो सकता है वो संबंध, या फिर ज्ञान योग का अनुसरण करने से हो सकता है, या कर्म योग का अनुसरण करने से हो सकता है। लेकिन लॉर्ड चैतन्य कहते हैं नहीं, अभिधेय क्या है, केवल भक्ति विधि। अभिधेय का मतलब प्रोसेस कनेक्ट करने की, जीव और भगवान के संबंध को स्थापित करने की, वो भक्ति है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को इसका ज्ञान दिया, अभिधेय विचार उसको कहा गया है शास्त्रीय भाषा में, अभिधेय विचार। हाँ, एक संबंध विचार, अभिधेय विचार। तो फिर तो कोई कहेगा प्रयोजन विचार भी होना चाहिए, तो प्रयोजन विचार नहीं है। प्रयोजन विचार क्या है, महाप्रभु ने कहा मुझे ही देखो, मेरे एक्टिविटीज को देखो, वे प्रयोजन है मुझे देखने मात्र से। क्योंकि महाप्रभु क्या करते थे, वो हर समय गाते थे, नाचते थे, भावावेश में आ जाते थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देते, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के कारण जब भक्त बन जाते हैं तो एक दिन उनके लिए कुछ प्रसाद भेजते हैं और किसी पत्ते के ऊपर दो श्लोक लिख के भेजते हैं, उनमें से एक था वैराग्य विद्या निज भक्ति एगो शिक्षार्थम एकम पुरुषः पुराना, कि शिक्षार्थम, ये शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु, कौन सी? भक्ति योग की शिक्षा, वैराग्य विद्या। वैराग्य विद्या क्या है? भक्ति योग है एक्चुअली। हाँ, तो इसकी शिक्षा देने के लिए कृपां बुधीर्यम तमहम समथिंग की, ऐसे कृपा धारी जो चैतन्य महाप्रभु है उनको मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तो इस प्रकार से भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को शिक्षा नहीं दिया, जो कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स थे, तो जो कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स थे उनको क्या किया? शिक्षा दी चैतन्य। बाकी जनरल मास लोगों के साथ क्या करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भक्ति लता बीज है। क्या है? भक्ति लता बीज, हरि नाम देना। आगे इसका वर्णन आएगा, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो ये लॉर्ड चैतन्य बीज बो रहे थे सब जगह, हजारों हजारों लाखों की संख्या में दे रहे थे। तो ऐसे महाप्रभु बाकी जनरल लोगों के संग में नृत्य करते थे, गान करते थे, लेकिन जब उनके कुछ अंतरंग पार्षद थे उनको ये दिव्य शिक्षा का नॉलेज देते थे, ताकि वो आगे चलकर इसको बहुत सरल रूप दे। तो इसलिए ये रूप शिक्षा है। रूप शिक्षा भगवान चैतन्य की कृपा से रूप गोस्वामी ने शिक्षा को प्राप्त किया। और हर जो शिक्षा है, ये जो तत्व है उनके देव है, है कि नहीं? अब वो प्रणाम मंत्र देखते हैं कि जब संबंध जो संबंध ज्ञान है उसके अधिष्ठाता देव कौन है? मदन मोहन। इसलिए जब हम संबंध के स्तर में हैं तो हमारा ये कार्य होता है कि हम जो संबंध विग्रह हैं, संबंध अधिष्ठाता देव, संबंध तत्व के, वो कौन है? क्यों हमारा संबंध ज्वाइन नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने किसी और से संबंध बना लिया है। और कौन सा संबंध है? वो काम का। इसलिए भक्त संबंध विग्रह है मदन मोहन। मदन का मतलब है कामदेव, जो सारे संसार को आकर्षित करता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है, हे मदन मोहन जयताम सूरतो पंगोर, कि आपकी जय हो और आप क्या है? सूरता हो। कि आप बहुत अधिक मर्सीफुल हो, बहुत अधिक वदान्याय हो, सूरतो पंगोर, और मैं कैसे हो? पंगो हो। मम मंदा मतेर गति, और मैं फुल्लिश हूँ, मंद नहीं, मंद बुद्धि का है, मतलब क्या है? फुल्लिश है, मूर्ख है। मम मंद मतेर गति, और मेरी कोई गति नहीं है, मुझे रिफ्यूज किया जा रहा है। मत सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो, तो आपके चरण कमल ही मेरे लिए सब कुछ है। तो इस प्रकार से जो भक्त है वो ये संबंध विग्रह से प्रार्थना करता है मदन मोहन से, कि मैं तो अभी भौतिक संसारिक चीजों के प्रति मेरा बहुत आकर्षण है, प्लीज ए मदन मोहन आप अपनी ओर मुझे आकर्षित करिए। संबंध ज्ञान को हमें स्थापित करना है, इसलिए परिक्रमा मार्ग में वो मदन मोहन का विग्रह आता है। सनातन गोस्वामी ने उनकी स्थापना की थी, मदन मोहन जो डीटीज है। तो संबंध ज्ञान के जो विग्रह है वो कौन है? मदन मोहन। और भोग करने की भावना से जीव अपनी पहचान खो बैठा है। क्यों हम पहचान खो बैठे हैं? भोग करने की जो भावना है, हम भूल गए एग्जैक्टली मैं कौन हूं और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, खो बैठा है। तो इसलिए मदन मोहन के जो विग्रह और उसके आचार्य है उस टीचिंग के, सनातन गोस्वामी। तो दूसरी जो शिक्षा है वो है अभिदय ज्ञान। तो अभिदय ज्ञान के आचार्य कौन है? श्रील रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी इस डीटीच की स्थापना करते, रूप गोस्वामी को प्रकट हुए गोविंद देव। पहले से ही नियोजित था किसको क्या शिक्षा मिलने वाली है। मतलब शिक्षा के बाद उसी के अनुसार ड्यूटीज रिवील हो गई। शिक्षा देने के बाद ये दोनों आ गए इधर, है कि नहीं? वृंदावन आए और सबसे पहले तो सनातन गोस्वामी को मदन मोहन प्राप्त हुए, और फिर बाद में रूप गोस्वामी को गोविंद देव। हाँ, तो गोविंद देव का प्रणाम मंत्र क्या है? दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमात् श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालिभि सेव्यमानं स्मराभि। मैं तो उनका स्मरण करता हूँ जो सुवर्ण के टेम्पल, वृंदावन टेम्पल जो सुवर्ण का है वहां निवास कर रहे हैं। और कल्प द्रुमाद अधम इंस नीचे, कौन सा वृक्ष के नीचे? कल्प वृक्ष के नीचे, डिजायर ट्री के नीचे। ऐसे जो राधा गोविंद देव है, जो अपने बहुत कॉन्फिडेंशियल जो संगी है, एसोसिएट्स है, उनके द्वारा सेवित है, सेव्य मानो, और मैं अपना उनको प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से सेव्य मानो, सेव्य मानो मीन्स प्रोसेस, सेवा की प्रोसेस, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिदेय, अभिदेय ज्ञान, इसी कारण इस ड्यूटीज की प्रमुखता। सेव्य मानो, सेव्य सेवा, सर्विंग द ड्यूटीज, इस सर्विंग विग्रह की जो सेवा है या भगवत सेवा है भक्ति योग के आधार पर। तो इसलिए इसके जो आचार्य हैं वो रूप गोस्वामी हैं। और बाकी तीसरा ज्ञान का विषय कौन सा है? प्रयोजन तत्व। तो प्रयोजन के आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। तो कोई कहेगा कि लॉर्ड चैतन्य ने रामानंद राय को ये शिक्षा दी, फिर आप रघुनाथ दास गोस्वामी को क्यों कह रहे हैं? तो रामानंद राय ने आचार्य का रोल नहीं स्वीकार किया। आचार्य का रोल किसने स्वीकार किया? रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो रामानंद राय ने भक्त का रोल स्वीकार किया, है कि नहीं? सारे भक्त हैं, आचार्य भी भक्त हैं, लेकिन एक रोल अदा करते सबको आगे नॉलेज प्रदान करने के लिए आचार्य। तो इसलिए रामानंद राय ने आचार्य का रोल नहीं स्वीकार किया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसको स्वीकार किया। तो उसके जो प्रयोजन विग्रह हैं वो कौन से हैं? गोपीनाथ। तो गोपीनाथ के बारे में कहा जाता है, श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्षण वेनु स्वनिर गोपीर गोपीनाथ श्रेयस्तुनः। तो ये है कि कर्षण वेनु, अपने वेनु के द्वारा जो सबको कर्षित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, जो दिव्य रस को प्रदान करते हैं, और वंशीवट में सबको आकर्षित करते हैं, गोपियों को। तो ऐसे जो कृष्ण हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार का नॉलेज चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सिस्टमैटिकली प्रदान किया है। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा का मतलब ऐसा मैप नहीं है सिक्वेंसली, कि नहीं अभी उनको मैं सबसे पहले संबंध तत्व का ज्ञान देता, मतलब आप देखो वहां से गए तो पहले तो संबंध विचार का नॉलेज दिया किसको? सर्वम भट्टाचार्य को। फिर प्रयोजन विचार का दिया, फिर आए तो क्या दिया? संबंध ज्ञान दिया, फिर अभिदेय ज्ञान दिया, और फिर अभिदेय विचार का ज्ञान दिया प्रकाशानंद सरस्वती को। तो ऐसा मैप नहीं सिक्वेंस, लॉर्ड चैतन्य है, वो ईश्वर है, स्वतंत्र ईश्वर। जहां भी कुछ ऐसी बात आती है तो कृष्णदास कविराज उनको कहते स्वतंत्र ईश्वर, वो किसी के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु 18 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे थे, और 18 साल में उन्होंने यही किया, दिन में भक्तों के संग में नाम संकीर्तन करते थे और रात को रिलीश करते थे जिस चीज का आस्वादन करने के लिए वो आए थे। तो ऐसे महाप्रभु ने इनको शिक्षा दी दशाश्वमेध घाट, कौन सी जगह? वो हमने पढ़ा ना, दशाश्वमेध घाट, क्योंकि जब महाप्रभु प्रयाग में थे तो बहुत भीड़ होता था सब जगह उनके आसपास, भीड़ की जगह कैसे मैं सिखाऊंगा, एकांत में चलते हैं। तो एकांत वो प्लेस था वहां, दश अश्वमेध यज्ञ हुए थे उस प्रयाग के नदी के किनारे। तो उस स्थान में रूप गोस्वामी को ले गए और एकांत में अभी भी है वो स्थान मंदिर, एक ही बार शायद मैं एक या दो बार गया हूँ मैं उधर उस स्थान में। तो वहाँ रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, बहुत पुराना मंदिर है उधर, हाँ कुछ तो है वहाँ। तो वहाँ उनको शिक्षाएं प्रदान की चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिनों के लिए, ये जी है याद करना कहाँ कहाँ उपदेश दिया,
10 दिनों के लिए तो सब
सुविधा। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो महाप्रभु ने उनको ये 3 तत्वों की शिक्षा दी जो मैंने कहा, भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, रस तत्व और शक्ति संचारिला। तो हर एक व्यक्ति को शक्ति संचारित की उन्होंने, कृष्ण शक्ति बिना नाहीं तार प्रवर्तन, कल हम इस पे चर्चा कर रहे थे। तो शक्ति संचारित की, रूप गोस्वामी को कौन सी शक्ति संचारित की, सिद्धांत को समझने की शक्ति संचारित की, समझने की। रूप गोस्वामी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, कुछ नहीं, रूप गोस्वामी को बिठाया और कहा सुना एक मने, एक मन होकर सुनो अभी मैं क्या कह रहा हूं। तो अभी तो ये तो डिफिकल्ट है, मतलब समझने की शक्ति, मतलब कोई जिज्ञासा करेगा तो उसका मतलब है कि वो समझने का वो वृत्ति भी है। तो लेकिन रूप गोस्वामी को शक्ति संचारिया, इस सिद्धांत को समझने की शक्ति महाप्रभु ने संचारित की। और जब रामानंद राय से मिले थे गोदावरी के किनारे साउथ इंडिया यात्रा में, तो वहां चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, उनको उत्तर देने की शक्ति संचारित की थी। महाप्रभु कहते मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, तो प्रश्न पूछते हैं तो कहते देखो मैं तो नहीं बोल सकता, मैं तो कठपुतली हूं, आप ही मुझसे बुलाओ। तो महाप्रभु मतलब महाप्रभु ही प्रश्न पूछ रहे हैं और लॉर्ड चैतन्य ही उत्तर दे रहे हैं। वो माइक है केवल ना, माइक अपने आप में उत्तर नहीं दे सकता, वो तो बस बच सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट थे रामानंद राय, तो उनके मुख से महाप्रभु ने बजाया। मतलब जैसे वीणा है, तो वीणा अपने आप में आवाज नहीं कर सकती, वीणा के तार को आप छेड़ो तो वो आवाज करेगी। तो वैसे रामानंद राय को महाप्रभु ने छेड़ा तार, वो उदाहरण देते हैं, तो वो आवाज करने लगे और उसी को महाप्रभु ने प्रश्न पूछे और रामानंद राय ने उत्तर दिए। तो जो उत्तर देने की जो शक्ति है रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान की थी, और जो प्रश्न पूछने की शक्ति महाप्रभु ने किसको दी थी, सनातन गोस्वामी को। इतने प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न, अभी तो पुस्तक है प्रश्न और उत्तर, तो उस समय तो नहीं थे प्रश्न और उत्तर, तो लेकिन महाप्रभु ने प्रश्न, प्रश्न पूछना भी एक कला है कि नहीं। कई बार तो मुझे तो डिफिकल्ट रहता है, प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्या प्रश्न पूछे। तो रूप सनातन गोस्वामी को प्रश्न पूछने की शक्ति भी चैतन्य महाप्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी वो शक्ति दो समझने की, आपके जो कृष्ण भक्ति के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा की याचना करनी होगी। और चैतन्य महाप्रभु ही की कृपा से ही ये संभव हो सकता है कि इन शिक्षाओं को हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु शिक्षा प्रदान करना शुरू करते हैं और बहुत विस्तार से ये शिक्षा है। तो हम देखते हैं कि कैसे ये आगे बढ़ेंगे श्लोकर। तो चैतन्य महाप्रभु अभी उनको कहना शुरू करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बिठाया और कहा कि मैं तो सागर की एक बूंद आपको चखा देता हूं। यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगान 84 लक्ष योनि ते करे ब्रह्मांत। सबसे पहले अभी ये शुरुआत कर रहे हैं, क्या महाप्रभु शिक्षा दे रहे, सबसे पहले ये शुरुआत हो गई। महाप्रभु अभी बोलना शुरू किए, पूरी उनकी शिक्षाओं को शुरू किया। लॉर्ड चैतन्य ने कहा यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगन। तो महाप्रभु सबसे पहले तो जो साइंटिस्ट है उनके इसको काट रहे हैं। यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगन, ये जीव केवल पृथ्वी में नहीं है। हाँ वो कहते हैं ना अलग, हम मून में चले गए और वहां कोई लाइफ नहीं मिला हमें, जीव सृष्टि नहीं, वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन महाप्रभु काट रहे हैं कि वहां क्या है, सारे ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड का मतलब पृथ्वी में नहीं, ब्रह्मांड का मतलब 14 भुवन माझे, सारे 14 लोकों में, या फिर चंद्र आदि आदि जो ग्रह हैं वहां भी ये सब चीजें हैं। ब्रह्मांड किन चीजों से बना हुआ है? पंच महाभूतों से। कौन से महाभूत है वो? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इसलिए भगवत गीता में भी सेकंड चैप्टर में वर्णन आता है, जब जीव के बारे में भगवान कहते हैं, नित्य सर्वगतः स्थानुर अचलोयम सनातन। जीव क्या है? सर्वगता है, सब जगह है। सर्वगता में सब जगह है, चाहे फिर वो कोई भी स्थान हो ब्रह्मांड का, पृथ्वी में मिल रहे, जल में मिल रहे, आकाश में है, अग्नि में, जैसे वेदों में वर्णन आता है अग्निकोप नाम का जो जीव है वो अग्नि में है, तो उसको क्या कहते हैं आजकल, वार, क्या, फायर, फायर वार में समथिंग ऐसा कहते हैं, फायर फ्लाई, तो वो जीव भी है साइंटिस्ट ने अभी कहा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु तो सबसे पहले उनको काट रहे हैं और महाप्रभु ये स्थापित कर रहे हैं ब्रह्मांड भरी जीव, कितने हैं जीव, कहाँ कहाँ है, पूरे ब्रह्मांड में भरे हुए हैं। तो ऐसे नहीं कि हम चंद्र में गए या तो वहां जीव नहीं है, तो इसलिए फिर ये जीव सब जगह है, तो वो अलग अलग उन तत्वों के अनुसार उनका शरीर है। तो जल में है तो फिर जल के अनुसार उनका शरीर कंपाइल किया है या बनाया गया है, पृथ्वी में रह रहे तो उसके अनुसार उनका शरीर है, एयर में है तो उनके अनुसार उनका शरीर है, तो इस प्रकार से फायर में है तो उनके अनुसार उनका शरीर है। तो कितने ये शरीर है? 84 लाख प्रकार के जीव हैं, बॉडीज हैं। जलजा नवलक्षानी, जल में कितने हैं? 9 लाख प्रकार के जीव हैं। ये विष्णु पुराण से प्रभुपाद कोट करते हैं और बहुत इफेक्टिव ये श्लोक है, कहते हैं जलजा नवलक्षानी स्थावरा लक्ष विंशति। स्थावरा मीन्स इसमें पृथ्वी में कितने हैं जो चलने वाले, 20। स्थावरा लक्ष विंशति, 20 लाख प्रकार के। क्रमयो रुद्र संख्या, क्या रुद्र कितने हैं? 11 रुद्र हैं। तो कितनी संख्या है कृमि आदि, कृमि कीट वगैरह, उनकी कितनी है? 11 लाख प्रकार के हैं। और पक्षी नाम 10 लक्षणाम, पक्षी कितने प्रकार के हैं? 10 लाख प्रकार के। 30 लक्षानी पशवा, पशु, पशु कितने हैं? 30 लाख प्रकार के हैं। और 4 लक्षानी मानुषहा, तो मनुष्य कितने हैं? 4 लाख प्रकार के। तो इसीलिए इस चीज का वर्णन किया गया है कि इस प्रकार के जीव सारे ब्रह्मांड में भरे हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु इसको कह रहे हैं। यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, और वास्तव में अनंत है। अनंत का मतलब क्या है? अनंत मीन्स जिनका अंत नहीं है, सरल भाषा में अंत नहीं है। तो हमारे आचार्यों ने कहा कि अनंत अभी, जैसे कृष्ण जब बछड़े चराने जाते थे तो उस समय भगवान असंख्य बछड़े ले जाते थे, असंख्य का मतलब ही अनंत, जिस संख्या की कोई गिनती नहीं कर की जा सकती। तो आचार्यगण कहते हैं असंख्य मतलब एग्जैक्टली कितने, तो वो कहते हैं एक के ऊपर 20 शून्य डालो, 0s, उस चीज को आप कह सकते हो कि अनंत है। तो 20 0s आप काउंट कर सकते हैं क्या? उससे आगे भी कई 0s है। तो केवल हमें ये जानने के लिए वामन पुराण या किसी पुराण में इसका प्रमाण आता है। तो अनंत जीवगण, अनंत जीव है जिनकी किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसे जो जीव है वो क्या करते हैं, वो अलग अलग बॉडीज धारण करते हैं, और इन शरीरों का वर्णन यहाँ किया गया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, ये जानना सबसे पहले आवश्यक है, क्योंकि अभी अभिदय ज्ञान का वो वर्णन करते जा रहे हैं। तो क्योंकि हजारों प्रकार के शरीर हैं, तो इस प्रकार के शरीर क्यों अलग अलग जीवों को मिलते हैं? कर्म और चेतना। कर्मना दैव नेत्रेण जंतु देह उपपत्ते। जंतु, जंतु मीन्स जीव, उसको देह मिलता है कर्मना दैव नेत्रेण। हाँ, तो अलग अलग चेतना के कारण उनको ये अलग अलग बॉडीज धारण करती हैं, मिलती हैं। और ऐसे नहीं कि जीव नष्ट हो जाते हैं। गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, न जायते न म्रियते वा कदाचिन नायम भूता भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुरानो न हन्यते हन्य माने शरीरे। तो इसको न हन्यते कर सकते हो, न मार सकते हो, न जायते न जन्म लेता है, न म्रियते। तो इस प्रकार से जो जीव है नाना योनियों में घूमता है, नाना योनि सदा फिरे करदय भक्षण करे। तो नाना योनियों में ये जो जीव है ट्रेवल करता है। और चैतन्य महाप्रभु कहते कि ऐसे जीवों से ये जो ब्रह्मांड है ये भर गया है। और उनके शरीर कितने हैं? 84 लाख। केशाग्र शतेक भाग पुना शतांश करे तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। तो पहले महाप्रभु ने बोला कि जीव है और वो शाश्वत है, और उनके उनका स्वरूप क्या है, मतलब साइज क्या है। यहाँ स्वरूप का मतलब क्या है? साइज। तो क्या साइज है उनका? केशाक्र शतेक भाग पुनः शतांश करी। भगवद गीता में भी इसका वर्णन सेकंड चैप्टर में आया है। वो फेमस श्लोकास भगवान ने बताए हैं, उन साइज का, आत्मा का ज्ञान उन्होंने दिया है। तो इतने छोटे हैं कि प्रभुपाद कहते हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज सो पावरफुल दैट ए मेयर एटॉमिक पोर्शन ऑफ स्पिरिट कैन बी द बिगेस्ट ब्रेन इन द मटेरियल वर्ल्ड। इतने छोटे से हैं कि भौतिक जगत में वो बड़ा कार्य कर सकते हैं। ब्रह्मा के शरीर में भी वही जीव है, और एक चींटी के शरीर में भी वही जीव है। वो पूरे ब्रह्मांड को सृजन कर रहा है, चला रहे हैं, मैनेज कर रहा है। और यहाँ भी एक एंड के इसमें भी क्या है, वही साइज है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा का आत्मा बड़ा है या किसी का मोटा शरीर है तो उसके अंदर मोटा आत्मा होगा, या फिर हाथी के अंदर मोटा आत्मा होगा, नहीं। उतना ही स्पार्क इतने बड़े शरीर को भी चला रहे, हाथी के शरीर और या आमीबा का शरीर, आमीबा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उसका साइज है ये, कि केशाग्र शत भागश। लॉर्ड चैतन्य प्रमाण प्रस्तुत कर रहे, यहाँ ऐसे नहीं बोल रहा अपनी ओर से, नहीं, ये कहा है शास्त्र इसका प्रमाण है। केशाग्र शत भागश शतांश सादृशात्म कहा जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्कना। तो केशाग्र या बालाग्र, भगवद गीता में और एक श्लोक प्रभुपाद तात्पर्य में कोट करते हैं, बालाग्र शत भागश शतधा कल्पित शश, कि बाल के आग्र भाग। ऐसे नहीं कि महाराज उस दिन क्लास में कह रहे थे गुरु महाराज फरीदाबाद में कि ऐसे नहीं कि बाल वो कहा गया है बाल अग्र, अग्र का मतलब क्या है, आगे वाला। बालाग्र शत भागश, बाल का जो अग्र भाग है उसको 100 भागों में विभाजित करो। ऐसे नहीं कि बाल लंबा बाल है उसको 100 भागों में करो, और उसका जो साइज आएगा वो आत्मा का साइज। महाराज कहते कि स्त्रियों का तो बड़ा होगा आत्मा, फिर उनके बाल, आज के तो पुरुष के भी बाल बड़े हैं, शिखा भी हमारी बहुत लंबी है। तो बाल अग्र शत भागश, बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित करके पुनः उसका 100 भाग करो। और ये ऐसे नहीं कि वो होगा, ऐसे नहीं समझना है कि वो साइज है, वो तो एक माप कुछ ना कुछ हमारे भौतिक, क्योंकि आध्यात्मिक चीज को आप नहीं नाप सकते। वो साइज और भी सूक्ष्म हो सकता है, वो स्पिरिचुअल है, लेकिन वो हमें बस जानकारी के लिए कि हाँ ये है। जैसे कहते हैं कि कमल नयन, अभी कृष्ण के नयनों की तुलना किससे करते हैं, तो ऐसे नहीं कि कमल के ही समान ही, नहीं, इस जगत में कोई ऐसी सुंदर या सॉफ्ट चीज नहीं जैसे कमल है। इसलिए हमारे लिए कुछ भौतिक चीज को यूज करके आध्यात्मिक चीज का दर्शन दिया जाता है। तो इस प्रकार से यही है कि जो इसका साइज है वो बहुत छोटा है और सबके शरीरों में उसी प्रकार से है। तो उस अग्र भाग को बहुत सूक्ष्म इसमें करते हो तो वो छोटा जो साइज है वो आत्मा का साइज है। बालाग्र शत भागश शतधा कल्पितश्च च भागो जीवस विज्ञः इति चाह पराश्रुति। तो ये श्रुति में कहा गया है। और फिर चैतन्य महाप्रभु भागवतम के एक श्लोक का एक छोटा लाइन उद्धृत करते हैं, सूक्ष्मानामपि अहम् जीवा। कृष्ण जब उद्धव को बताते हैं तो सूक्ष्मानाहम् अहम् जीवा, मतलब भगवत गीता में तो विभूति योग आदि में आया है कि मैं मनुष्य में राजा हूं, है ना, कभी इसमें बृहस्पति हो या फिर कई कई चीजें भगवान ने बोली, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। तो भगवान कहते जो सूक्ष्म चीज है ना सबसे, उसमें मैं कौन हूं, जीव हूं। मतलब उसे बताना चाहते कि कितना सूक्ष्म है। और ये सूक्ष्म जो जीव है वो जो, इसलिए भगवान ने कहा ममे वांशो जीव भूता जीव लोके सनातन, कि ये मेरा अंश है अर्जुन। तो इस प्रकार से हम भगवान के सूक्ष्म अंश है और अंश का कार्य है अंश की सेवा में रहना या उनके अधीन रहना। तारमध्ये स्थावर जंगम द्विभे जंगमे तिर्यक जल स्थल चर विभेद। अभी महाप्रभु हमें आगे ले जा रहे हैं। और ये सीक्वेंस को यदि नहीं याद रखेंगे या इस सीक्वेंस को नहीं समझेंगे तो आप जो डिवोटी का जो पोजीशन है कृष्ण भक्त का वो नहीं समझ सकते। कृष्ण भक्त होना या कोई कृष्ण भक्त है तो कितना टॉप मोस्ट लेवल है, वो कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है कृष्ण भक्त होना या कोई भक्त है, तो उससे हम समझ सकते फिर जो भक्त की महानता। तो लॉर्ड चैतन्य हमें अभी नीचे से ले जा रहे हैं, इसको समझना होगा कि अभी कृष्ण भक्त कौन है उसकी स्थापना करते हैं चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे। तार मध्य स्थावर जंगम द्विभेद, कि इतने नाना प्रकार के जीव है उनमें कितने विभाग है, द्वि विभाग। कौन कौन से, स्थावर मतलब नॉन मूविंग, जंगम मतलब मूविंग, जंगम करने वाले चलने वाले, स्थावर जो एक ही स्थान में निवास करते हैं, ट्रीज है, अलग अलग प्लांट्स है, स्टोन्स है, और जो जंगम कौन कौन से हैं, जो बर्ड्स हैं, एक्वाटिक्स आदि हैं, एनिमल्स हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उन जीवों में दो भेद है, स्थावर है, जंगम है, मूविंग नॉन मूविंग, और मूविंग में भी कितने भेद है, तीन। तीन भेद, कौन कौन से तीन भेद महाप्रभु कहते, तिर्यक जल स्थल चर विभेद। तिर्यक का मतलब है जो तिरछा चलता है तिरछा तिरछा मीन्स एक्चुअली तिर्यक का मतलब है नभचर, पशु पक्षी आदि, नभ बोले ना तिरछा चलते रहते, तिरछा तीर भी हो सकता, तीर से उनको मारा जाता है जल जलचर और स्थलचर, और उसको नभचर, एक इजी वे वर्ड है तो स्कूल में भी सुना है ना नभचर। तो जो जंगम है मूविंग में भी तीन कैटेगरीज है, क्या, जलचर स्थलचर और नभचर। इसलिए कृष्ण कहते हैं गीता में अच्छोदेयम अदायोयम अक्लेद्योशोषयवच आदायो, ऐसे जो है बर नहीं कर सकते, नित्य सर्वगत स्थानुर अचलोयम सनातन, नित्य सर्वगत। इसी कारण से वो श्लोक भगवान ने दिया है कि नित्य है, सब जगह है, जिनको जला नहीं सकते या कुछ ये नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस चीज को समझा रहे हैं। तो हम आगे फिर पढ़ेंगे आगे लॉर्ड चैतन्य कैसे अलग अलग चीजों को भेद करते करते फिर हमें ले जाते हैं, ये है कृष्ण डिवोटी, तब हम ग्लोरी समझ सकते हैं। इस प्रकार से ये रूप गोस्वामी की शिक्षा है, हम प्रार्थना करें वो समझने की हमें बुद्धि प्रदान करें। तो हम धीरे धीरे रूप गोस्वामी की कुछ शिक्षाओं को हम हृदयंगत कर सकते हैं, हमारे हृदय में धारण कर सकते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। श्रील रूप गोस्वामी पाद के श्री चैतन्य चरितामृत के निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नबचर
जंगम स्थावर जगह थाना स्थावर।